शिखा एक कोने में खड़ी गुस्से से उसे घूर रही थी। माधव ने घर में कदम रखा ही था कि कविता दौड़ती हुई आकर उसके सीने से लग गई और दहाड़े मार मार कर रो पड़ी। माधव बेचारा कुछ समझ न पाया, जबकि शिखा ने खींचते हुए अपना चेहरा फेर लिया। कविता, हुआ क्या है? कुछ तो बता, तू इतना रो क्यों रही है? माधव ने उसे संभालने की कोशिश की, पर वो चीख चीख कर रोने लगी। मैं क्या बताऊं भैया, मैं तो लुट गई, बर्बाद हो गई, मेरी बसी बसाई गृहस्थी उजड़ गई, सब कुछ खत्म हो गया। हुआ क्या है, कुछ ठीक से बता तो सही, माधव कुछ परेशान सा बोला। कविता ने झट से अपने आंसू पोंछे और अपना दुखड़ा सुनाने बैठ गई। भैया, वो और उनके परिवार वाले पिछले 2 महीने से मुझ पर दबाव बना रहे हैं कि आपको कहूँ उन्हें बाइक दिलाने। मैं अब तक मना कर रही थी तो बस मुझे 4 गालियां ही देते, 4 बातें सुनाते और घर से निकालने की धमकी ही देते, पर आज तो उन्होंने सच में मुझे घर से बाहर निकाल दिया। उन्होंने भी अपने मम्मी पापा को नहीं रोका और बोले कि जब तक बाइक साथ लेकर नहीं आती उस घर में कोई जगह नहीं मेरे लिए। मैंने कहा भी कि अभी मम्मी का इतना बड़ा ऑपरेशन हुआ है, मेरे भैया नई बाइक दिलाने के लिए पैसे कहाँ से लाएंगे, तो उन्होंने कहा कि वो सब उनको नहीं मालूम, वो बस इतना जानते हैं कि बाइक आएगी तभी मुझे वापस उस घर में जगह मिलेगी, वरना पड़ी रहूं आगे की सारी जिंदगी अपने भाई के घर। वैसे भी मैं उनके किसी काम की नहीं, इतने सालों में एक बच्चा तक नहीं दे सकी मैं उन्हें, वो मुझे छोड़कर दूसरी शादी कर लेंगे। एक बार फिर वो दहाड़े लगा लगा कर रो पड़ी। माधव उसकी बातें सुनकर चिंता में पड़ गया, उसने किसी तरह उसको संभाला। तो चुप हो जा, मैं बात करता हूँ सुबोध जी से, मैं उन्हें समझाऊंगा कि थोड़ा वक्त दे मुझे, अभी तो मेरे हाथ तंग हैं, मम्मी का ऑपरेशन, उनका इलाज, फिर रेस्टोरेंट के लोन की इंस्टॉलमेंट भी भरी है और इस महीने रेस्टोरेंट भी ठीक से नहीं जा सका तो काम भी कम ही हुआ, पर 1-2 महीने में मैं उन्हें नई बाइक दिला दूंगा। इतनी सी बात पर ऐसे तुझे यहाँ भेज देना, रिश्ता खत्म करने की धमकी देना ठीक नहीं। वो नहीं सुनेंगे भैया, मैंने कहा था तो कहते हैं कि पैसे नहीं हैं पर घर और रेस्टोरेंट तो हैं, कहूँ अपने भैया को कि उसमें से तुम्हारा हक दे तुम्हें। माधव सुनकर स्तब्ध सा उसे देखता रह गया, जबकि अनुपमा जी विचलित निगाहों से कविता को देखती रहीं। माँ थी वो, अपनी बेटी को बहुत अच्छे से जानती थी और ये भी जानती थी कि उसके लक्षण ठीक नहीं थे। आए दिन ससुराल से उसकी शिकायत आती ही रहती थी, क्योंकि 1 नंबर की कामचोर और बदतमीज थी वो, जिससे तंग आकर कई बार उसका पति खुद उसे यहाँ छोड़ गया था और हर बार माधव को अपनी बहन की उजड़ती गृहस्थी बसाने के लिए उनकी डिमांड्स पूरी करनी पड़ती थीं। अब बात इतनी ही थी या कोई और ही खेल चल रहा था यहाँ, ये तो भगवान ही जाने। माधव अभी उसकी बात पर शौक ही था कि कविता उसकी बाँह पकड़कर मिन्नत भरी नज़रों से उसे देखने लगी। भैया, मेरी उजड़ती गृहस्थी बचा लो, अगर उन्होंने सच में मुझे छोड़ दिया और दूसरी शादी कर ली तो मैं कहाँ जाऊँगी, क्या करूँगी? कविता, अभी सच में मेरे पास बिल्कुल पैसे नहीं, हाथ बिल्कुल ही खाली है। तो ये घर बेच दो ना भैया, घर और दुकान माँ के नाम है, उस पर उनके सभी बच्चों का बराबर हक हुआ, पर सालों से आप ही घर और रेस्टोरेंट का इस्तेमाल कर रहे हो, सारा पैसा आपके पास जाता है। मैंने तो कभी कुछ नहीं कहा, पर अब जब मेरी गृहस्थी उजड़ने की कगार पर है तो मुझे मजबूरन ये बात कहनी पड़ रही है। रेस्टोरेंट और घर का मैं उपयोग नहीं करती तो उन्हें बेचकर मुझे मेरा हिस्सा दे दो। कितनी बेशर्मी से उसने ये बात कही। माधव बस अचंभित सा उसे देखता ही रह गया, पर उसकी ये बात अनुपमा जी से बर्दाश्त न हुई और वो गुस्से में बोल पड़ी। कविता, बहुत बोल गई तुम, तुम्हारे मन में ये ख्याल भी कैसे आया? घर और रेस्टोरेंट बेच देंगे तो हम रहेंगे कहाँ, खाएंगे क्या, पैसा कहाँ से आएगा? इतनी भी स्वार्थी मत बनो कि अपने अलावा कोई नजर ही ना आए। तो क्या करूं मैं, सबके बारे में सोचकर अपनी गृहस्थी खराब कर लूं? और ऐसा क्या गलत कह दिया मैंने जो तुम मुझ पर ऐसे चिल्ला रही हो? इस घर और रेस्टोरेंट में से अपना हिस्सा ही मांगा है, अपना हक मांगना तो कोई गुनाह नहीं। कविता तो अनुपमा जी से ही भिड़ गई थी, उसकी बातें सुनकर अनुपमा जी के चेहरे पर रोषपूर्ण भाव उभर आए। कविता, हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि आप क्या करने की कोशिश कर रही हैं, पर हमारे जीते जी हम ऐसा नहीं होने देंगे। ये घर और रेस्टोरेंट माधव ने अपने खून पसीने की कमाई से बनाया है, इसमें उनकी सालों की मेहनत लगी है, उनकी उम्र भर की मेहनत और तपस्या का फल हम उनसे छिनते नहीं देंगे। ये घर और रेस्टोरेंट हमारे नाम है और हमारे जीते जी तो हम किसी को इस पर अपनी नज़र नहीं डालने देंगे, नहीं बिकने देंगे इसे। अनुपमा जी अपना फैसला सुनाकर जा चुकी थी, कविता भी गुस्से में फुफकारती हुई वहां से चली गई। माधव परेशान सा वहां खड़ा रह गया, फिर उसने खुद को संभाला, शिखा को अनुपमा जी के पास भेजा और खुद कविता से बात करने चला गया। पर जैसे ही दरवाजे पर पहुंचा, अंदर से आती आवाज सुनकर उसके कदम ठिठक गए और आंखें अविश्वास से फैल गईं। अभी काम नहीं हुआ है, भैया को तो मैं किसी तरह अपने आंसू दिखाकर फंसा ही लेती और मेरे लिए वो घर और रेस्टोरेंट बेचकर मुझे पैसे दे ही देते, पर माँ ने बीच में आकर पूरा खेल ही खराब कर दिया। उन्हें मनाने में अब थोड़ा वक्त लगेगा, पर तुम फिक्र मत करो, इस बार मैं भी ठान कर आई हूँ कि अपना हक तो लेकर ही रहूंगी। उस कई की आई लड़की के लिए भैया ने मुझे धमकी दी थी ना, अब मैं भी देखती हूँ कि जब रेस्टोरेंट और घर दोनों उनके हाथ से चला जाएगा तो कैसे होती है उनकी शादी और कैसे वो लड़की इस घर में बहू बनकर आती है। उधर से कुछ कहा गया जो माधव तो न सुन सका, पर उसके बाद कविता ने जो जवाब दिया उसने उसके पैरों तले जमीन ही खींच ली। अब तक थोड़ा थोड़ा करके हमने जितना भी भैया से लिया है उससे अब काम नहीं चलेगा, इसलिए इस बार मैंने बड़ा दाव खेला है। हर बार जैसे इस बार भी उन्हें अपनी झूठी कहानी सुनाई और चार आंसू बहाए तो वो बड़ी आसानी से मेरे बातों में आ गए। मैंने तो पूरा इंतजाम कर ही लिया था, अपनी बहन की गृहस्थी बचाने के लिए इस बार भैया घर और रेस्टोरेंट भी बेच देते, पर माँ की वजह से अब मुझे थोड़ा वक्त लग जाएगा यहाँ, पर अपना हक तो मैं लेकर ही रहूंगी। बस तुम ध्यान रखना कि भैया अगर तुमसे बात करने की कोशिश करे तो उनकी बातों में बिल्कुल ना आना, जो समझाया था वैसा ही करना, तभी हमारा मकसद पूरा होगा और घर में लक्ष्मी आएगी। वो तो आगे भी बोल रही थी पर माधव से आगे कुछ सुना ना गया। अपनी बहन से मिला इतना बड़ा धोखा वो सह ना सका, उसे अपने कानों सुने पर भरोसा न हुआ कि उसकी अपनी बहन उसके खिलाफ इतना बड़ा षड्यंत्र रच रही है। सालों से उसके प्यार का नाजायज फायदा उठाकर उसे ठगती आ रही है और उसे खबर ही नहीं। माधव सदमे की स्थिति में बोझिल कदमों से अपने कमरे में आ गया और निढाल सा बेड पर आकर बैठ गया। उसके कानों में अब भी कविता के कहे शब्द गूंज रहे थे, दिल एकदम सुन्न पड़ गया था और दिमाग ने तो जैसे काम करना ही बंद कर दिया था। कविता बेहद शातिर थी, कैसे बात को अपने फेवर में करते हुए सामने वाले को अपने शीशे में उतारना है बहुत अच्छे से जानती थी। तभी तो सालों से माधव से अपना काम निकलवाती आ रही थी। जानता तो वो भी था कि उसकी बहन बहुत तेज है, लालची भी है और सिर्फ अपने बारे में सोचती है, पर आज उसने उसका जो रूप देखा उसे देखकर वो दंग रह गया था। सोचने पर मजबूर हो गया था कि कोई इतना खुदगर्ज और स्वार्थी कैसे हो सकता है। जिस बहन पर उसने अपना सब कुछ बिना किसी शिकायत के वार दिया, आज भी उसके खुशी के लिए सब कुछ करता है, वही बहन उसके लिए इतना बुरा कैसे सोच सकती है। डायन भी साथ घर छोड़कर वार करती है, पर उसने तो अपने ही भाई को अपना दुश्मन सा बना लिया है।
रेस्टोरेंट और घर बेचने के ख्याल से ही उसका मन व्याकुलता से भर गया। अपनी अब तक की सारी जिंदगी लगाई थी उसने इन दो चीजों के पीछे, तब जाकर आज उनके सर पर अपनी छत थी और रेस्टोरेंट खोलने का उसका सपना पूरा हुआ था। कितना स्ट्रगल किया था उसने और कितना कुछ सहा था, कितनी कुर्बानियां दी थीं। इतनी आसानी से वो अपनी सालों की मेहनत बर्बाद नहीं होने देगा, माधव ने मन ही मन फैसला किया। अपनी बहन का असली चेहरा देखने के बाद अब उसके मन में उसके लिए कोई भावना शेष नहीं रही थी और अब वो बस इस समस्या का समाधान ढूंढ रहा था। तभी उस सन्नाटे में फोन की रिंगटोन की आवाज गूंजी और माधव की तंद्रा टूटी। जेब से मोबाइल निकालकर देखा तो स्क्रीन पर राधिका का नाम चमक रहा था। अजीब इत्तफाक था, वो बेचैन था, परेशान था और उसके बिना बताए उसका सुकून उसे तलाशते हुए उस तक पहुंच गया था। माधव के चेहरे के भाव कुछ कोमल हो गए और उसने कॉल रिसीव कर ली। हेलो। हेलो माधव जी, आप जल्दी में फ्रूट्स मेरे पास ही छोड़ गए, राधिका ने परेशान स्वर में अपने फोन करने की वजह बताई। तब माधव को ध्यान आया कि घर के लिए फ्रूट्स वो राधिका के पास छोड़ आया है। कोई बात नहीं, आप उन्हें रख लीजिए। मैं कैसे? राधिका हिचकिचाई। वैसे ही जैसे इतने दिनों से मैं आपके दिए फ्रूट्स रख रहा था। नहीं, ऐसा ठीक नहीं लगता, आप मुझसे कहीं बाहर आकर मिल लीजिए, मैं आपको ये वापस कर दूंगी। इसकी कोई ज़रूरत नहीं राधिका, फल ही तो हैं, आप रख लीजिए। माधव ने दबाव डाला तो राधिका कुछ कह ना सकी। कुछ देर उनके दरमियान अजीब सी खामोशी छाई रही, फिर उसे तोड़ते हुए राधिका ने विचलित स्वर में सवाल किया। माधव जी, कुछ हुआ है क्या? राधिका का सवाल सुनकर माधव चौंक गया। नहीं तो, पर आप अचानक ये सवाल क्यों पूछ रही हैं? बस मुझे लगा जैसे आप किसी बात को लेकर परेशान से हैं। जब हम मिले थे तब और अब में आपकी आवाज़ में कुछ अंतर सा लग रहा है, अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझसे शेयर कर सकते हैं। राधिका के इस जवाब पर माधव कुछ पल खामोश रह गया, जिसने राधिका को उसके सवाल का जवाब दे दिया। माधव जी, हम दोस्त हैं ना, फिर अपनी ही दोस्त से अपनी परेशानी बताने में कैसे झिझक, क्या पता मैं आपकी कोई मदद ही कर दूं, और ना भी कर सकी तो कम से कम अपनी परेशानी बांटकर आपका मन तो हल्का हो जाएगा। माधव ने अब कविता के घर आने और बाइक की डिमांड के बारे में बता दिया, बाकी सब बातें उससे छुपा गया। बस इतनी सी बात के लिए आप इतने परेशान हो रहे हैं? इसमें तो मैं आपकी मदद कर सकती हूँ, मेरे पास पैसे हैं, आप मुझसे पैसे लेकर बाइक खरीद कर उन्हें दे दीजिए, बाद में जब कभी आपके पास पैसे हों वापस कर दीजिएगा, राधिका ने बेफिक्री भरे अंदाज में जवाब दिया। उसकी आवाज़ में खनक थी, शायद वो माधव के काम आ सकती थी, इसी की खुशी आवाज़ में खनक बनकर बिखर गई थी, पर माधव की परेशानी तो कुछ और ही थी। मैं आपसे पैसे कैसे ले सकता हूँ राधिका? उसने संकोच भरे स्वर में कहा और उसकी बात सुनकर राधिका के चेहरे पर हल्की नाराजगी उभर आई। क्यों नहीं ले सकते आप मुझसे पैसे? क्या दोस्त ज़रूरत पड़ने पर एक दूसरे की मदद नहीं करते? क्या अगर कल को मुझे ज़रूरत पड़ी और आपके पास पैसे हुए तो आप मेरी मदद नहीं करेंगे? राधिका के सवालों ने माधव को निशब्द कर दिया। पल भर ठहरते हुए उसने आगे कहा,
माधव जी, अपनी ये झिझक मिटा दीजिए। मेरे पास पैसे रखे हैं और आपको जरूरत है तो अगर वो आपके काम आते हैं तो इसमें कोई बुराई नहीं, दोस्ती में ये सब चलता रहता है। पर अभी आपको खुद को स्कूटी लेने की जरूरत है, अगर आप पैसे मुझे दे देंगी तो स्कूटी कैसे लेंगी? मैं इस बार स्कूटी नहीं कार लेने की सोच रही हूँ, उसके लिए मुझे अभी थोड़ी और सेविंग करनी है, इसलिए अभी मैं कुछ नहीं ले रही। जब लूंगी तब तक आप पैसे वापस कर देंगे, तो आप इसकी फिक्र मत कीजिए। माधव कहना तो उसे अभी बहुत कुछ चाहता था पर कह ना सका। जाने राधिका सब जानने के बाद उसके और उसके परिवार के बारे में क्या सोचेगी, यही सोचकर चुप रह गया और उसकी बात मान ली, जिससे राधिका खुश हो गई। माधव जी, वैसे तो ये आपका फैमिली मैटर है तो मुझे इसमें कुछ भी बोलने का कोई हक नहीं है, पर यह ठीक नहीं है। ऐसे लड़की को उसके मायके भेजकर मायके वालों को अपनी डिमांड पूरी करने पर मजबूर करना, रिश्ता खत्म करने की धमकी देना गलत है। कुछ देर बाद राधिका ने ये बात कही थी, जिस पर एक बार फिर माधव हामी भरने के अलावा पलटकर कुछ कह ना सका। अब तक तो वो ये सब चुपचाप इसलिए बर्दाश्त कर रहा था क्योंकि अपनी बहन की कमियों की कीमत समझता था उसे, पर आज जो सच्चाई उसके सामने आई उसने उसे कुछ कहने सुनने लायक छोड़ा ही नहीं था। टू बी कंटिन्यूड।